स्वागत है आपका दिनभर में। आज है 26 अक्टूबर दिन बुधवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता येदुरप्पा को मिली बड़ी राहत। जमीन से जुड़े एक घोटाले में अदालत ने उन्हें बरी किया। इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों ने अफगानिस्तान के गोर प्रांत में अगवा किए गए 30 लोगों की हत्या की। दुनिया जहां में सुनिएगा, अफ्रीका के कुछ देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से क्यों अलग कर रहे हैं।
कि उनकी दृष्टिकोण से आईसीसी जो है बिल्कुल बायस्ड है और पश्चिम देश यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो और यूरोप का एक पपेट है।
होगी भारत न्यूजीलैंड के बीच चल रहे चौथे वनडे की खबर भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 40 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाला मामले में बरी कर दिया है। बेंगलुरु स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में येदुरप्पा के साथ उनके दो बेटों और एक दामाद को भी बरी कर दिया है। उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हुए जबरदस्त हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। हमले में एक स्कूल के भी चपेट में आने की खबर है और मरने वालों में स्कूली बच्चों के भी होने की आशंका है। हालांकि सीरियाई स्टेट टीवी ने दावा किया कि इन हमलों में आतंकवादियों की ही मौत हुई है। नेटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक में उन खबरों पर चिंता जाहिर की गई है जिसमें कहा गया है कि स्पेन सीरिया जा रहे रूसी जहाज़ों को ईंधन उपलब्ध करा रहा है। ब्रसेल्स में हुई इस बैठक में नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री माइकल फेलन ने साझा बयान में कहा कि इन जहाज़ों में रूसी लड़ाकू विमान ले जाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल सीरियाई शहर अलेप्पो पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। माइकल फेलन ने कहा,
we'd be extremely concerned that any NATO member should consider assisting a Russian।
हम इस बात से बड़े चिंतित हैं कि नेटो का कोई सदस्य रूसी जहाजों को ईंधन उपलब्ध करा रहा है जबकि इन जहाजों में ले जा रही टास्क फोर्स सीरिया में बमबारी कर सकती है जिसमें कई सीरियाई नागरिक भी मारे जा सकते हैं। नेटो को तो इस मसले पर इकट्ठा खड़ा रहने की जरूरत है, तभी तो हम काला सागर के इलाके में अपने एयरक्राफ्ट तैनात कर रहे हैं ताकि सीरिया संकट में फंसे लोगों की मदद कर सकें और दिखा सकें कि इस मसले पर नेटो एक है। ये थे ब्रिटिश रक्षा मंत्री माइकल फेलन के शब्द। हालांकि स्पेन ने कहा है कि उसने अभी ईंधन के लिए रूस के निवेदन पर हामी नहीं भरी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान में एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया है कि गोर सूबे में कथित इस्लामिक स्टेट से संबंधित लड़ाकों ने अगवा किए गए 30 नागरिकों को मार दिया है। गोर सूबे की सरकार के प्रवक्ता अब्दुल हे खतीबी ने कहा कि इन लोगों को पहाड़ों में लकड़ियां जमा करते समय अगवा कर लिया गया था। जब आम नागरिकों ने इन्हें बचाने की कोशिश की तो इन्हें गोली मार दी गई। फ्रांस में अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने देश के उत्तरी इलाके में बने विशाल जंगल कैंप से हजारों शरणार्थियों को सुरक्षित निकाल लिया है। अधिकारियों ने बताया कि ये काम उम्मीद से भी कम समय में पूरा हो गया। अधिकारियों ने बताया कि अब इन शरणार्थियों को देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित आप्रवासी केंद्रों में बसाया जाएगा जहाँ ये अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। सोमवार से ही इस कैंप को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जापान में एक अदालत ने देश के उत्तर पूर्वी इलाके में दो स्थानीय नागरिकों पर 13 मिलियन डॉलर यानी करीब 87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन पर लापरवाही का आरोप था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा को सीबीआई की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया है। उन पर साउथ वेस्ट माइनिंग कंपनी से जुड़े 40 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप था। अदालत ने येदुरप्पा के साथ ही उनके दो बेटों और दामाद को भी बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की जाँच सीबीआई को सौंपी गई थी। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा और उनकी पार्टी बीजेपी के लिए आज खुशी का दिन है। येदियुरप्पा और उनके बेटे और दामाद के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबसे मजबूत मुकदमे को बेंगलुरु की सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामला 2008 से 2011 के बीच का है जब येदियुरप्पा कर्नाटका की पहली बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक एकड़ जमीन को डीनोटिफाई करने के बाद उसी जमीन में के हिस्से अपने दो बेटों को दे दिए थे। उस जमीन की कीमत सरकारी आकलन के अनुसार 1.5 करोड़ रुपये थी, लेकिन साउथ वेस्ट माइनिंग कंपनी ने वो महंगी जमीन मात्र 20 करोड़ रुपये में खरीद ली थी। इतना ही नहीं, कंपनी ने 20 करोड़ रुपये प्रेरणा एजुकेशन ट्रस्ट को भी दिया, जिसे येडियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्रा और बीवाई विजेंद्रा चला रहे थे। दरअसल आरोप ये था कि साउथ वेस्ट माइनिंग कंपनी की मालिक जिंडल स्टील वर्क्स थी और ये 40 करोड़ रुपये एक तरह से किसी काम के मुआवजे के तौर पर उसे दिए गए थे। अदालत के फैसले पर समाज परिवर्तन समुदाय नाम के एनजीओ से जुड़े एसआर हिरेमठ ने कहा, हम जरूरी कदम उठाएंगे। आपराधिक दुराचार में शामिल जनता के एक सेवक ने अपने एजुकेशन ट्रस्ट को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने को 870 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। यदि सीबीआई इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करती है तो हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे। ये थे एसआर हिरेमठ के शब्द। समाज परिवर्तन समुदाय वही एनजीओ है जो लोकायुक्ता जस्टिस संतोष हेगड़े की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में ले गई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया की पीठ ने मामले को CBI से जांच कराने का आदेश दिया था। अब अदालत के फैसले पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश गुंडोरो ने कहा, गंभीर आरोपों के बावजूद उनको इस मामले में राहत मिली है। जब से उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तभी से यह साफ हो गया था कि केंद्र सरकार उन्हें सुरक्षा देगी। ये थे दिनेश गुंडूराव के शब्द। कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई अपील करेगी या नहीं, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन येडियुरप्पा बेहद खुश हैं। उन्होंने अदालत के बाहर पत्रकारों से कहा, आज के फैसले से हमें बहुत राहत मिली है। हम खुश हैं कि राजनीति से प्रेरित झूठे इल्जामों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हमें उम्मीद है कि बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं को आज के फैसले से स्फूर्ति मिलेगी और हमारी पक्ष सत्ता में लौटेगी। ये थे BS येडियुरप्पा के शब्द। सीबीआई अदालत के फैसले से फिलहाल येडियुरप्पा कैंप में खुशी की लहर है, हालांकि उनके खिलाफ दायर कुछ और मामलों में अदालत का फैसला आना अभी बाकी है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
समाजवादी पार्टी में तमाम प्रयासों के बावजूद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव खेमे में कोई सुलह तो नहीं हो पाई, बल्कि शह और मात का खेल अभी भी जारी है। पार्टी ने आज मंत्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बर्खास्त किए गए 4 मंत्रियों को वापस लेने की संभावना को खारिज कर दिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज राज्यपाल से भी मुलाकात की है। पूरे घटनाक्रम पर सुनिए समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी में बुधवार को भी संशय कायम रखने की कोशिशें होती रहीं। पार्टी ने आज एक और नेता को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। मंत्री पवन पांडे पर भी अनुशासनहीनता के आरोप लगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने इसकी जानकारी दी।
पवन पांडे वन राज मंत्री को आसू मलिक सदस्य विधान परिषद के साथ धक्का मुक्की एवं उनकी पिटाई करने के गंभीर दुराचरण, पार्टी की नीतियों हितों के विपरीत कार्य करने एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। दल से मुख्यमंत्री से हमने अनुरोध किया है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। जो भी अनुशासनहीनता करेगा, गुंडही करेगा, नंबर 2 के काम करेगा, कब्जा करेंगे, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में नहीं रह सकते।
पवन पांडे पर आरोप था कि उन्होंने विधायक आशु मलिक के साथ अभद्रता की थी। आशु मलिक ने उनके खिलाफ हजरतगंज थाने में रिपोर्ट भी लिखाई थी। पुलिस ने तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पार्टी ने बड़ी कार्रवाई कर दी। हालांकि पवन पांडे इससे पूरी तरह बेफिक्र हैं और कहते हैं कि उन्हें गलत तरीके से निकाला गया है। BBC से बातचीत में उन्होंने कहा,
कोई और ना देखा ना कोई जान नहीं पाया कि हाँ ऐसी घटना हो गई इनके साथ। तो ये साजिशन झूठ बोल रहे हैं, किसके कहने पे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं तो मैं नहीं जानता। ना कोई पूछा गया, ना मुझसे कोई जांच की गई, ना मुझे कोई नोटिस दी गई। मैं थोड़ा जरूर कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तर्क करके हमें निकालने की जानकारी।
वहीं समाजवादी पार्टी में आज भी दिन भर हलचल रही। अखिलेश यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की, शिवपाल यादव ने मंत्री पद से हटाया जाना शायद अब स्वीकार कर लिया और उन्होंने घर से मंत्री पद का बोर्ड हटवा दिया, और मुलायम सिंह ने शिवपाल यादव को एक बार फिर अपने घर बुलाया। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने समर्थकों के साथ बैठक की और चुनाव में कमर कसने की हिदायत दी। इस बीच अखिलेश यादव के राजभवन जाने को लेकर भी चर्चाएं काफी गर्म रहीं। चर्चाएं ये थीं कि अखिलेश राज्यपाल के पास विधायकों के समर्थन की बाकायदा सूची लेकर राज्यपाल से मिले थे, लेकिन दोपहर बाद राजभवन से सूचना आई कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को दीपावली की बधाई देने गए थे। बहरहाल विधायकों की सूची वाली खबर की न तो पुष्टि ही हुई और न ही कहीं से खंडन हुआ। वहीं अब ये भी साफ हो गया है कि शिवपाल और अखिलेश के समर्थक अपने अपने ढंग से चुनाव में जाने की तैयारी में लग रहे हैं। पार्टी से निकाले गए मंत्री पवन पांडे की बातों से ये साफ लग रहा था।
समाजवादी पार्टी चुनाव हरा झंडा मोदी लाठी में बांध लूंगा, वोट मांगूंगा, नेता जी मुख्यमंत्री जी के किए गए विकास कामों को जनता के बीच में ले जाऊंगा, सभा करूंगा, और मुझे किसी कामों से
मुलायम सिंह यादव ने मंगलवार को कहा था कि उनकी पार्टी और परिवार में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये घटनाएं शायद ही किसी एकता का परिचय दे रही हों। बहरहाल परिवार के नेताओं को अब चुनाव की तैयारी भी याद आ रही है, लेकिन सब ने शायद अपने अपने ढंग से ही मैदान में जाने का फैसला किया है, साथ में जाने का नहीं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने अगवा किए गए 30 नागरिकों की हत्या कर दी है। मध्यवर्ती गोर प्रांत के अधिकारियों के मुताबिक पहले पुलिस ने बंधकों को छुड़ाने के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें इस्लामिक स्टेट के एक कमांडर की मौत हो गई। उसी का बदला लेने के लिए चरमपंथियों ने बंधकों की हत्या कर दी। मारे गए एक व्यक्ति के रिश्तेदार गुल अजीम ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है। गुल अजीम कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि सरकार इस बर्बर चरमपंथी गुट के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए जो पिछले 15 साल से हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं। गोर के स्थानीय अधिकारी जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और कहां छुपे हैं। सरकार को उनके खिलाफ एक गंभीर सैन्य अभियान चलाना चाहिए। ये थे इस्लामिक स्टेट के हमले में मारे गए शख्स के रिश्तेदार गुल अजीम के शब्द। खबर की पूरी जानकारी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने काबुल में BBC पश्तो सेवा के संवाददाता सईद अनवर से बात की।
जी, अफगानिस्तान के मरकजी प्रांत गोर में गवर्नर ने तस्दीक किया है कि गुज़श्ता रोज दौलत इस्लामिया या दाइश नामी शिदत पसंद गुरोह के मुसलह अफराद ने 28 अफराद को उस वक्त यरगमाल बना दिया जब वो पहाड़ में लकड़ी जमा करने में मसरूफ थे, और कुछ लोग उनके दरमियान किसान बताए गए हैं और कुछ माल मवेशी चराने में मसरूफ थे। इन लोगों को गुज़श्ता रोज अपने साथ ले गए हैं। गोर के गवर्नर खाजे ने BBC को बताया के गुज़श्ता रात उन्हें रिपोर्ट मिली के शिदत पसंदों ने आम शहरियों को गिरफ्तार करने के बाद मारा गया है, और उनका कहना था कि आज भी उस दूरफ्तादा इलाके से मुतादत लोगों ने ये तस्दीक किया है कि मुतादत आम शहरी शिदत पसंदों की जानिब से मारे गए हैं।
सईद अनवर, अगर इस्लामिक स्टेट की बात करें तो इस गोर प्रांत का जो इलाका है वहाँ वो कब से है, और अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ उनके होने की खबर है?
अफगानिस्तान में तो दौलत इस्लामिया या इस्लामिक स्टेट मशरकी प्रांत ननगरहार में गुज़श्ता 2 सालों से बहुत सरगर्म है, और ननगरहार के 3-4 जिलों में गुज़श्ता 2 सालों से उनके खिलाफ कई बार बहुत बड़े ऑपरेशन हुए, और उनके कई अहम कमांडर जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन इलाकों के सतह पर बताया गया है वो मारे गए हैं या ड्रोन हमले में मारे गए हैं, और 2-3 दिन पहले भी अफगान फोर्सेस और आम लोगों के दरमियान इसी ननगरहार प्रांत के जिला पचीरा गांव में इस्लामिक स्टेट के जंगजुओं ने हमला किया और 20 से ज्यादा घरों को आग लगाया। तो ये ननगरहार प्रांत में तो ये गुज़श्ता 2 सालों से जारी है, तहम ये पहली बार है कि मरकजी प्रांत गोर में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, और मकामी हुकाम ने तस्दीक किया है कि जो लोग आम शहरियों को अगवा करने के बाद उनको मारा है वो खुद को इस्लामिक स्टेट के साथ वाबस्ता समझते हैं। तहम गोर प्रांत के गवर्नर ने ये भी कहा है कि यही शिद्दत چند گروہ اس سے پہلے بھی اغوا برائے تاوان کے کئی کیسوں میں ملوث تھے، اور تقریباً 2 سال پہلے شیعہ کمیونٹی یا ہزارہ کمیونٹی کے 10 سے زیادہ افراد کو گاڑی سے اتار کر مارے تھے، لیکن اس وقت یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ اسلامک اسٹیٹ سے وابستہ ہیں۔
یہ تھے بی بی سی پشتو سیوا کے سنواد داتا سعید انور۔ بھارت میں ویاپار کرنا کتنا آسان ہے، اس پر وشو بینک کی جاری سوچی میں بھارت ماتر ایک پائدان ہی اوپر چڑھ پایا ہے۔ بھارت سرکار کے لیے یہ سوچی نراشا جنک اس لیے ہے کیونکہ پردھان منتری نریندر مودی نے میک ان انڈیا کا ابھیان شروع کر امید جتائی تھی اور کہا تھا کہ بھارت میں ویاپار کرنے کی پرکریا کو اور آسان بنایا جائے گا۔ ایک رپورٹ کے ساتھ دلی سے سلمان راوی۔
وشو بینک کی اس تازہ رپورٹ سے بھارت کو نراشا ضرور ہوئی ہے۔ نراشا اس لیے کیونکہ پچھلے ایک سال سے بھارت سرکار دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ کر پرنالی سے لے کر لائسنس تک کی پرکریا کو سرل بنا رہی ہے تاکہ ادیمیوں کو ویاپار کرنے میں آسانی ہو اور بھارت میں نویش کو بڑھاوا ملے۔ کیندریہ وانجیہ اور ادیوگ منتری نرملا سیتارمن کا کہنا ہے کہ اس سوچی کو تلناتمک روپ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔
We have to realize that these rankings are relative ranking in the sense every country makes an effort to improve the ease of doing business in their own country and we are also one of them and sometimes others are faster than us۔
نرملا سیتارمن کہہ رہی تھیں کہ وہ وشو بینک کی اس تازہ سوچی سے ناراض ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ بھارت نے بہت سے سدھار کاریکرم وشو بینک کی سمے سیما کے بعد شروع کیے۔ انہوں نے امید جتائی کہ اگلے سال تک بھارت کی استھتی اور بھی بہتر ہو جائے گی کیونکہ دیش میں کئی سدھار وادی کاریکرم چل رہے ہیں۔ 190 دیشوں کی سوچی میں پچھلے سال بھارت کا ستھان 131 تھا۔ اس سال بھارت ایک پائیدان اوپر چڑھ کر 130 ستھان پر پہنچا ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی کا کہنا تھا کہ ان کی سرکار کوشش کر رہی ہے کہ بھارت پہلے 50 دیشوں کی سوچی میں پہنچ جائے۔ وشو بینک کی سوچی میں نیوزی لینڈ پہلے ستھان پر ہے جبکہ سنگاپور دوسرے پر۔ حالانکہ اس سوچی میں پاکستان کا ستھان 144 ہے۔ تازہ رپورٹ پر وانجیہ منترالے میں سچیو رمیش ابھیشیک کا کہنا تھا،
سی فار دا فرسٹ ٹائم 4 reforms ڈن بائی اس ہیو بین ریکگنائزڈ بائی دیم۔ اور ڈسٹینس ٹو فرنٹیئر ہیز انکریزڈ وچ مینز دیٹ آن 6 پیرامیٹرز آؤٹ آف 10۔
رمیش ابھیشیک کہہ رہے تھے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارت کے 4 ایسے سدھار ہیں جنہیں وشو بینک نے مانیتا دی ہے۔ وشو بینک کے 10 میں سے 6 ایسے ماپدنڈ ہیں جن کو ہم نے سفلتا پوروک حاصل کر لیا ہے، باقی کے 4 پر کام زوروں سے چل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی ایسے قانون بنانے میں بھارت سفل رہا ہے جن سے ویاپار کرنے میں آسانی کا راستہ صاف ہو رہا ہے۔ رمیش ابھیشیک کا کہنا تھا کہ جی ایس ٹی بل بھی اس دشا میں اچھی پہل ہے، مگر وشو بینک کی سوچی جاری کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر ملی جلی پرتکریا دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں کچھ لوگوں نے بھارت کے ایک پائیدان اوپر چڑھنے کا سواگت کیا ہے تو کچھ نے لکھا ہے کہ اگر سرکار کو سوچی میں بھارت کی رینکنگ کو بہتر کرنا ہے تو ایسے مدوں سے خود کو باہر نکال لے جن سے سماج میں تناؤ پیدا ہو رہا ہے۔ سلمان راوی، بی بی سی، دلی۔
انتراشٹری اپرادھ نیالے کی استھاپنا دنیا میں مانوتا کے خلاف ہوئے اپرادھوں پر لگام کسنے کے لیے کی گئی تھی، لیکن اب اس سنستھا پر یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ بھید بھاؤ والا نظریہ رکھتا ہے۔ انہی آروپوں کے ساتھ دکشن افریقہ نے سنستھا سے باہر جانے کا فیصلہ لے لیا ہے، اور اب افریقی دیش گامبیا نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس سے باہر نکل جائے گا۔ اس فیصلے کا کیا اثر ہوگا اور انتراشٹری اپرادھ عدالت کی سنسار کے پٹل پر کیا جگہ ہے، دنیا جہان میں نکھل رنجن نے اس ہفتے یہی جاننے کی کوشش کی ہے۔
دنیا جہان۔
جب جب بڑے یدھوں نے دنیا کو لہو لہان کیا، تب تب لوگوں کو امن کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور شانتی سنگٹھنوں نے اپنے پیر جمائے۔ لیگ آف نیشن، سنیکت راشٹر، انتراشٹری اپرادھ عدالت، ایسی ہی کچھ سنستھائیں ہیں جن کا گٹھن دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ ان سنستھاؤں کے استھتو میں رہنے پر بھی بہت سی جنگوں کو روکا نہیں جا سکا، بلکہ کئی یدھوں کے لیے تو ان سنستھاؤں پر ہی ذمہ واری کی انگلی اٹھی۔ پہلے وشو یدھ کے تھمنے کے ترنت بعد ہی ایک ایسے سنستھا کی ضرورت محسوس ہوئی جو دیشوں کی سیما سے پرے جا کر مانوتا کے خلاف یا یدھ اپرادھوں کی سنوائی کر سکے۔ 1919 کے پیرس پیس کنونشن میں اس بات پر پرزور چرچا ہوئی اور پھر شروع ہوئی وہ قواعد جس کا نتیجہ آنے میں قریب 83 سال لگ گئے۔ 2002 में आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत अस्तित्व में आया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज के प्रोफेसर अजय दुबे,
जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं इसके, वो एग्री किए कि जब भी जेनोसाइड, ह्यूमन राइट वायलेशन और मेजर केसेज ऐसे होंगे जो कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी समझा जाएगा, उस पे उनको ट्राई किया जा सकता है, बट द मेंबर कंट्रीज हैव टू बी सिग्नेटरी एंड दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस, और उसी से उसका ज्यूरिडिक्शन तय हुआ।
124 सदस्यों वाली संस्था दिखने में भले ही बड़ी हो, लेकिन अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चीन और मध्य पूर्व के ज्यादातर देश इसके सदस्यों में नहीं हैं। सदस्य बनने के लिए देशों को अदालत के चार्टर पर दस्तखत करने के अलावा अपने यहाँ की संसद से इसकी पुष्टि भी करवानी होती है। बहुत से देश ऐसे भी हैं जिन्होंने दस्तखत तो कर दिए लेकिन उसकी संसद से पुष्टि नहीं कराई। ऐसे में इस संस्था के असर पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में ऐसी कोई संस्था जिसका सदस्य अमेरिका ना हो, वो कितनी असरदार होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है।
साइन नहीं करने का मतलब ये होता है कि आप उसके डिसीजन से बाइंड नहीं होंगे और उसके डिसीजन को फॉलो नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन जो इसके पीछे जो ताकतें चाहिए वो अमेरिका और इम्पोर्टेंट बहुत सारे कंट्रीज हैं वेस्ट के जो प्रोवाइड करते हैं, वो पूरे इस तरह को सपोर्ट करते हैं। वो अपने देश पे इसका ज्यूरिडिक्शन ना हो इस तरह के क्राइम के लिए, वो इंश्योर करता है कि हम इसके सिग्नेटरीज नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में जो सिग्नेटरीज नहीं है उनको भी वो टारगेट करके और करते हैं। सही है कि उससे उसकी जो पहचान है और उसकी जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाती है जब अगर अमेरिका जैसे देश इसके सिग्नेटरी नहीं है, भारत भी सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट स्टेप पहले माना जाता था कि इंटरनेशनल लेवल पे एक इंटरनेशनल ज्यूरिडिक्शन के लिए जो कोर्ट बनेगा वो इससे स्थापित होगा, बट धीरे धीरे ये पॉलिटिकल रूप लेते जा रहा है तो इससे झटका भी लग सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत पर जिम्मेदारी थी मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के सुनवाई की। 14 साल के कार्यकाल में इसने जिन मामलों की सुनवाई की है उनमें ज्यादातर इन्हीं से जुड़े हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत ने सत्तासीन राष्ट्रपति पर भी मुकदमा चलाने का साहस तो दिखाया, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इनमें से ज्यादातर मामले अफ्रीकी देशों के निकले। अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत के आदेश पर जिन मामलों की जांच की जा रही है उनमें एक को छोड़ सभी अफ्रीकी देशों से जुड़े हैं। जिन 5 मामलों में अदालत ने बड़े फैसले सुनाए वो सभी अफ्रीकी संदिग्धों के खिलाफ थे। गैर अफ्रीकी देशों के खिलाफ कुछ मामले जरूर चले हैं और इनमें ब्रिटेन भी शामिल है, लेकिन ये सभी जांच के शुरुआती दौर में हैं। इसी बीच अफ्रीकी देशों ने इससे बाहर निकलने की कवायद शुरू कर दी है। दक्षिण अफ्रीका में भारत के राजदूत रहे शिवशंकर मुखर्जी।
सही या गलत है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अफ्रीका में अफ्रीकन यूनियन और अफ्रीका के देशों का दृष्टिकोण क्या है, उनका परसेप्शन क्या है, और ये बिल्कुल सही है कि उनकी दृष्टिकोण से आईसीसी जो है बिल्कुल बायस्ड है और पश्चिम देश यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो और यूरोप का एक पपेट है, क्योंकि अभी तक जितने भी डिसीजन आए हैं, और डिसीजन तो बहुत कम ही आए हैं, बहुत ही आहिस्ते काम हुआ है, इतना कहना सही होगा कि काम हुआ ही नहीं है बहुत केसेस में, सारे के सारे अफ्रीका पे लागू हैं। ये कुछ सालों से चल रहा है कि उनका जो दृष्टिकोण है आईसीसी के तरफ बेसिकली ये है कि आईसीसी में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है।
अफ्रीकी देश बहुत पहले से ही इस संस्था की नियत पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका आरोप है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत की बजाय अफ्रीकी अपराध अदालत की तरह काम करती है। इन आरोपों के साथ केन्या, बुरुंडी, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकी यूनियन के देशों ने इससे बाहर निकलने का फैसला किया है। वैसे अदालत के आदेशों पर नाफरमानी तो वो पहले से ही करते रहे हैं। इन देशों में ये भावना मजबूत हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत पश्चिमी देशों के हाथ की कठपुतली बना हुआ है और उन इलाकों में हो रहे युद्ध अपराधों पर उसकी नजर जाती ही नहीं जिनमें पश्चिमी देश, अमेरिका या उनके सहयोगियों पर आरोप लगने की आशंका हो।
जिम्मेदारी पूरी की पूरी तरह से पश्चिमी पाखंड, पश्चिमी ढोंग यानी कि पश्चिमी हिपोक्रेसी पर लागू होता है, क्योंकि कंपेयर करिए मिडल ईस्ट में जो हो रहा है उसमें आईसीसी की कोई नजर नहीं है। पैलेस्टाइन जब कंप्लेंट करता है वॉर क्राइम्स के ऊपर इसराइल के अगेंस्ट, हाँ या ना कहने के पहले अभी तक उसको एडमिट भी नहीं किया है उस केस को, 6 साल हो गए हैं। वॉर क्राइम्स के ऊपर पता नहीं कितने केसेस लागू हो सकते हैं मिडल ईस्ट में, जो एक टोटल मेस है। इराक में सदाम हुसैन पर लगाया आरोप कि आपके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कि खुद ही अब कहते हैं कि झूठ था। पहले इराक में एक भी सुसाइड बॉम्बर नहीं था, अब सदाम के बाद मेरे ख्याल 900 करीब सुसाइड बॉम्बिंग्स हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया जब यमन में सिविलियंस को मारता है, उसके ऊपर आईसीसी की नजर नहीं होती, ना कोई उंगली उठाता है। तो ये सही या गलत है मैं ये नहीं कह रहा, और ये भी नहीं कह रहा कि अफ्रीका में वॉर क्राइम्स नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है कि क्यों अफ्रीका के देश ये समझते हैं कि आईसीसी बायस्ड है।
अफ्रीकी देशों ने ये कदम भले ही हताशा में उठाया हो, लेकिन उसके पीछे जो कारण हैं उनसे असहमत होना थोड़ा मुश्किल है। एक सवाल ये भी है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के दुश्मन तो दुनिया के और हिस्सों में भी हैं। अफ्रीकी देश ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत के निशाने पर क्यों आ गए?
इसका जवाब ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अफ्रीका के नेशंस जो हैं वो बहुत आसानी से डिमोनाइज किया जा सकता है, सॉफ्ट टारगेट हैं। और दूसरे जो हैं जिनके ऊपर वॉर क्राइम्स के एक्यूजेशंस जो हैं लगाए जा सकते हैं, लगाना चाहिए, वो एक ना एक तरह से पश्चिम के जो पावरफुल देश हैं उनके दोस्त हैं या उनका साथ देते हैं। पाकिस्तान को सबसे पहले दोषी ठहराना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, लेकिन पाकिस्तान की अमेरिका को जरूरत है। सऊदी अरेबिया यमन में इनोसेंट लोगों को बम से उड़ा रही है, लेकिन सऊदी अरेबिया उनका एलाय है। तो अफ्रीका में उनका स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट सिर्फ अफ्रीका के मिनरल्स के लिए है, इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट है। ये सिर्फ अफ्रीका के देशों के नहीं, नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में ये दृष्टिकोण बिल्कुल फैला हुआ है।
इसी साल अंतर्राष्ट्रीय अदालत के दफ्तर को स्थायी पता मिला है, और इसी बीच अफ्रीकी देशों ने इससे निकलने की मुहिम शुरू कर दी है। अब इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि अफ्रीकी देश अगर अंतर्राष्ट्रीय अदालत से सचमुच बाहर हो गए तो इसका नतीजा इस संस्था पर किस रूप में सामने आएगा। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
इस दुनिया जहान के बारे में लिखिएगा अपनी राय। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। रांची में न्यूजीलैंड और भारत के बीच चौथा वनडे मैच चल रहा है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने जीत के लिए 261 रन का लक्ष्य रखा है। मैच का ताज़ा हाल बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त। जी आदेश।
जी अमरीश, अगर मैच की बात की जाए तो बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच पहुँच गया। धोनी के अपने होम ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जा रहा है। भारत का स्कोर थोड़ी देर पहले 32 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट खोकर 154 रन था। अक्षर पटेल 11 और मनीष पांडे 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत का जो चौथा विकेट गिरा वो कप्तान धोनी के रूप में गिरा, जो निशम की थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, मिडिल स्टम्प पर पिच होकर लेग स्टम्प की तरफ जा रही थी और धोनी उसे ऑफ साइड में खेलना चाहते थे। इसी कोशिश में वो चूक कर बैठे, बोल्ड हो गए। 31 गेंदों का सामना करने के बाद उनके बल्ले से 11 रन निकले, जबकि इससे पहले के रहाणे ने बेहद शानदार 57 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। रोहित शर्मा ने एक बार फिर निराश किया, उनके बल्ले से केवल 11 रन निकले और विराट कोहली ने 45 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अब देखना यह है कि भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि इसी बीच मनीष पांडे भी 12 रन बनाकर टीम सऊदी का शिकार बन चुके हैं। आने वाले बल्लेबाजों में केदार जाधव हैं, हार्दिक पांड्या हैं और अमित मिश्रा से उम्मीदें की जा सकती है। और इससे पहले जैसा कि आपने बताया कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 260 रन बनाए। आज उनका टॉप ऑर्डर चला। मार्टिन गप्टिल ने 72 रन बनाए, टॉम लैथम ने 39 रन बनाए, केन विलियमसन ने 41 रन बनाए और रॉस टेलर ने 35 रन बनाए, जबकि भारत के अमित मिश्रा ने 42 रन देकर 2 विकेट लिए। और थोड़ी देर पहले मलेशिया में खेली जा रही एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी में आज थोड़ी देर पहले भारत ने मेजबान मलेशिया को 2-1 से मात दी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया खेल समाचारों के लिए आदेश कुमार गुप्त को। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा को CBI की एक विशेष अदालत ने 40 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाला मामले में बरी कर दिया है। उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हुए जबरदस्त हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कुछ स्कूली बच्चों के भी होने की आशंका है। नेटो के रक्षा मंत्रियों की बैठक में उन खबरों पर चिंता जाहिर की गई है जिनमें कहा गया है कि स्पेन सीरिया जा रहे रूसी जहाजों को ईंधन उपलब्ध करा आ रहा है। अफगानिस्तान में एक टीवी अधिकारी ने बीबीसी को बताया है कि गोर सूबे में कथित इस्लामिक स्टेट से संबंधित लड़ाकों ने अगवा किए गए 30 नागरिकों को मार दिया है। फ्रांस में अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने देश के उत्तरी इलाके में बने विशाल जंगल कैंप से हजारों शरणार्थियों को सुरक्षित निकाल लिया है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिनभर की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद घटना चक्र में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया शाकिर आलम ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।